તારીખ 4/1/1997 શ્રી સમયસર કળષ્ટિકા શ્લોક 49 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 33.
સમયસર કળષ્ટિકા કરતા કર્મ અધિકાર અધિકારનો ચોથો કળશ છે, ક્રમથી 49મો કળશ છે. કોઈ પણ પદાર્થ પોતામાં વ્યાપીને કાર્ય કરે છે, કિસી ભી પદાર્થ અપને મેં પ્રસર કરકે વ્યાપના માને પ્રસર કરકે કાર્ય કરતી હૈ ઓર દૂસરે પદાર્થ મેં ઉસકી અવ્યાપકતા હૈ, પ્રસર નહીં સકતા, ઇસલિયે કાર્ય નહીં હોતા. कोर्ट में एक बात आती है, किसी आदमी ने चोरी किया हो, खून किया हो, कोई भी अपराध किया, तो अपराध करने वाले की उपस्थिति होती है तो अपराध होता है. जिसके पर आरोप आता है वो क्या सिद्ध करता है? अगर सही बात है कि मैं अपराध नहीं किया है, तो उसके लिए उसको पहले वो सिद्ध कर देता है कि मैं इस वक्त और जगह था, इसका ये सबूत है. एलिबी कहते हैं उसको, एलिबी कानून की भाषा में उसको एलिबी कहते हैं. कि जब मैं था ही नहीं तो मैंने मार दिया, वो बात कहां से आई? मेरी उपस्थिति तो और जगह है, देखो मैं इधर हूं. ऐसे एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की अनुपस्थिति हमेशा हमेशा होती है. जैसे परमाणु में जीव अनुपस्थित रहता है, जीव में परमाणु अनुपस्थित रहता है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं है, प्रसार नहीं है, व्यापकता नहीं है. कहां तक? कि शरीर और जीव में में से जीव अन्य क्षेत्र पे चला जाता है तब हम उसको लाश बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं. लेकिन अभी भी संयोग में जीव है, लाश तो लाश ही है जी, ये मुर्दा ही है. जैसा है वैसा देखो, जैसा है वैसा देखने से मोह नहीं होगा, अन्यथा कल्पना करोगे तो मोह भाव हो जाएगा. इसलिए यहां पर वस्तु का स्वरूप दिखाते हैं कि व्यापकता एक पदार्थ में होती है, अन्य पदार्थ में नहीं होती है. दूध में पानी डाला, स्थूल दृष्टि से हम ऐसा देखते हैं कि दूध में पानी मिल गया, लेकिन दूध में पानी नहीं मिला है. दूध दूध ही रहा है, पानी पानी ही रहा है. पानी दूध नहीं बन सकता, दूध में डालने से पानी है वो दूध नहीं बन सकता, ये बात जरूर है. अगर बन जाता तो पानी मिलता नहीं. आज दूध में सब डालते, इतना पानी डालते कि पानी भी पीने को नहीं मिलता, क्योंकि दूध का भाव 13-15 लीटर किलो है, गीता है। इस तरह से एक क्षेत्रावगाह होने पर भी जड़ तत्व रहता है, चैतन्य तत्व रहता है, जड़ चैतन्य नहीं होता, चैतन्य जड़ नहीं होता। क्यों? कि कभी कोई वस्तु अपना स्वरूप को छोड़ करके, स्वरूप का त्याग करके अन्य वस्तु रूप बनती नहीं, ये मर्यादा है, ये प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा है, जिसका अतिक्रमण, जिसका त्याग, जिसका उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। ये बात कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य श्री करते हैं। भले ही हमारे आचार्य लोग दिगंबर अवस्था में जंगल में निवास करते थे, फिर भी पदार्थ के विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने शास्त्र भी वैज्ञानिक भाषा में लिखा है। सर्व धर्मों में शास्त्र में उपदेश देते हैं, जैन धर्म में विज्ञान को स्थापित करके उस विज्ञान पर से उपदेश को विज्ञान आधारित बना करके फिर उपदेश दिया है। उपदेश को इस तरह से दिया है, सीधा उपदेश को नहीं दिया है, ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा नहीं किया है। क्योंकि पदार्थ का स्वरूप ऐसा है इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसा लेते हैं, इसलिए जो हो नहीं सकता इसको नहीं करना चाहिए, जो हो सकता है इसको करना चाहिए, इतनी सी बात है। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैव नैव एतदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव असंभवं व्रते का कर्तु कर्म स्थिति इति उद्दाम विवेक खस्मरम हो भारेण भिन्दस्तमो नानी भूय सदा एष लसितः कर्तृत्व शून्य पुमान। तदा सो एष पुमान कर्तृत्व शून्य लसितः ते काले, उस समय में, ते काले मैंने उस समय में, तदा मैंने तब, कब के जब जीव को ज्ञान होता है तब, तब का मतलब यहां वो लेना है कि जब जीव को वस्तु का स्वरूप ज्ञान होता है कि वस्तु स्वरूप की मर्यादा क्या है, तब जो जीव अनादि काल से मिथ्यात्व रूप परिणमन करता था, परिणमा था, वही जीव कर्म करने से रहित हो गया, वो नया कर्म बांधने नहीं लगा। जब जो जीव अनादि काल से वस्तु के स्वरूप का अज्ञान के कारण मिथ्यात्व रूप परिणमन करता था, मिथ्यात्व माने क्या, कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है फिर भी वैसा परिणमन करना है। जैसे शरीर के परमाणु में जीव नहीं है फिर भी मैं शरीर की क्रियाएं, शरीर का कार्य मैं करता हूं, ऐसा जीव अनुभव करता है, वो जीव का मिथ्यात्व रूप परिणमन है, मिथ्या अनुभव रूप परिणमन है। एक परमाणु, शरीर का एक परमाणु क्या कार्य भी जीव कर सकता नहीं है, अगर करता तो कोई भी अपने एक बाल को भी सफेद होना नहीं देता, लेकिन वो असंभव है, हो ही नहीं सकता। सभी परमाणु का तो करता नहीं, एक परमाणु को भी, एक परमाणु का कार्य भी नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान से रहित है वो अज्ञानी है। तो सभी संसार के जीव ऐसे ही है, स्वयं जीव होकर के मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं कि हम शरीर का और दूसरे दूसरे पदार्थों का कार्य हम करते हैं। तो व्यवसाय करता है कोई, तकनीकी काम करता है कोई, कैसा काम करता है, उसमें एक ही मान्यता है, एक ही अनुभव है। जीव होकर के भी अजीव का कार्य करता है। लेकिन जब से ज्ञान हुआ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब से वो मिथ्यात्व रूप परिणमा था, वही जीव, वही जीव कर्म करने से रहित हो गया। उसको नया कर्म बंधन नहीं हुआ। क्यों? कि कर्म बंधे ऐसा मिथ्यात्व अज्ञान का परिणमन उसका छूट गया। वो जीव कैसा है कि ज्ञानी भुज तमह बिंदन, ज्ञानी होता हुआ, तमह मैंने अंधकार, अज्ञान अंधकार को बिंदन छेदता हुआ, नाश करता हुआ, अनादि थी मिथ्यात्व रूप परिणमते, जीव और कर्म का एक पर्याय रूप परिणमता था वो छूट गया। शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ, ऐसा होने से
रिमाइंड करने
अनादि से मिथ्यात्व रूप परिणमन करते हुए जीव और कर्म का एक रूप परिणमन होता है। मैं कर्म करता हूँ, सुद्गल कर्म की पर्याय भी मैं करता हूँ, मैंने कर्म बांधा और मैंने कर्म को छोड़ा। बहुत प्रसिद्ध बात है जैनियों में, ये बात प्रसिद्ध है कि जीव कर्म को बांधता है, जीव कर्म को छोड़ता है। आचार्य श्री कहते हैं कि कर्म का जीव का एक पर्याय रूप बात हुई अज्ञान अंधकार है। कृपालु देव ने अपनी गूढ़ भाषा में वो बात किया, ग्रहे अरूपी रूपी ने ए अचरजनी बात, जीव बंधन जाने नहीं के वो जिन सिद्धांत, आत्मसिद्धि साधन। ग्रहे अरूपी रूपी ने, कर्म बांधे ग्रहण किया, मैंने बांध लिया, जीव तो अरूपी है, वो रूपी को कैसे ग्रहण कर सकता, ये तो अचरज की बात है, कैसे हो ही कैसे सकता अचरज। मैंने आश्चर्य, एक आश्चर्य की बात है, लोग कैसे कहते हैं कि जीव ने कर्म ग्रहण किया यानी बांध लिया, ये तो अचरज की बात है। जीव बंधन जाने नहीं, बंधन का स्वरूप, कर्म बंधन का स्वरूप लोग जानते नहीं, कि जिन सिद्धांत किस प्रकार से बात करता है। व्यवहार की भाषा में ऐसे शास्त्र में बात आई कि जीव ने कर्म बांधा, लेकिन वो जिस दिन सिद्धांत समझना उतना आसान नहीं है। हमारा सारा करणानुयोग में कर्म का बंधन कैसे होता है और कर्म कैसे छूटता है, दो बात मुख्य तौर से। लोग मान लेते हैं कि जीव कर्म को बांधता है, जीव कर्म को छोड़ता है। द्रव्यानुयोग कहता है कि ऐसा कभी हो ही सकता नहीं। तो करणानुयोग और द्रव्यानुयोग परस्पर विरुद्ध है क्या? जीव और कर्म का जो संबंध है, संयोग होना और वियोग होना, क्या होता है? जीव को कर्म संयोग होता है संसार अवस्था में, कर्म वियोग होता है मुक्त अवस्था में। संसार अवस्था में कर्म संयोग होता है, मुक्त अवस्था में कर्म वियोग होता है। ये संयोग वियोग में निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपस में कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उनका विस्तार करणानुयोग है। लेकिन द्रव्यानुयोग यह कहता है कि एक दूसरे में एक दूसरे की उपस्थिति है ही नहीं, संयोग है। दूध पानी का संयोग है, लेकिन दूध में पानी नहीं और पानी में दूध नहीं होता, कभी अलग रहा है। और अलग रहा होने से उसको बिल्कुल अलग कर सकते हैं, संयोग का वियोग भी कर सकते हैं। गर्म करो दूध को, गर्म करो पानी का बाष्पीभवन हो जाएगा, दूध रह जाएगा। दूध का बाष्पीभवन नहीं होता, पानी का होता है। जड़ भाव ये जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। बनासी नाटक तो बहुत पढ़ लिखे हैं, समय साल नाटक में
जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव सुप्रतीत पणे
जैसे समझाए छे, सुप्रतीत पणे अच्छी तरह जिसको समझ में आता है उसका निवेड़ा हो जाता है। क्योंकि जीव विभाव कब तक करता है, विकार कब तक करता है, कि जड़ चैतन्य की एकता उसकी समझ में है या ना समझ में है, वहां तक अज्ञान है। वहां तक जब मालूम पड़ता है तो परिस्थिति परिणाम की पलट जाती है। तो परिस्थिति में क्या पलटा आता है कि जब जीव और कर्म मैंने उद्गत एक पर्याय रूप परिणमता था, वो बात छूट गई। मिथ्यात्पत्ति क्या हुआ? शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ। उस वक्त क्या हुआ? अपना अकेला शुद्ध मैंने मिलावट रहित द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों के मिलावट रहित शुद्ध चैतन्य का, शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव हुआ। और शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने से मिथ्यात्व का अंधकार है वो छूट गया, मिट गया। किसके द्वारा मिथ्यात्व अंधकार छूटा, किसके द्वारा मैंने क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जिससे मिथ्यात्व का अंधकार छूट गया, मिट गया? इति उद्दाम विवेक घस्मरम भारेण, इति मैंने जैसे कहते हैं कि बलवान है ऐसा विवेक, बलवान विवेक के द्वारा, विवेक है ज्ञान का, ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान की पर्याय है। बलवान विवेक के द्वारा यानी बलवान भेद ज्ञान रूपी सूर्य के तेज के समूह द्वारा वेद ज्ञान को सूर्य का तेज कहा है। वेद ज्ञान सूर्य तेज जैसा है, क्या उपमा दिया है आचार्य ने, उपमा कैसे दी है? वेद ज्ञान वो कोई मामूली विकल्प नहीं कि जड़ जुदा है चैतन्य जुदा है, ऐसा कोई मामूली विवेक नहीं। जीव को अपने स्वरूप का अनुभव, कैसा? जीवमय, ज्ञानमय, ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव, जो अनुभव में जड़ से भिन्नता का अनुभव है, ऐसा जो अनुभव है वो ज्ञान रूपी सूर्य है, वेद ज्ञान रूपी सूर्य है। वेद ज्ञान की महिमा क्या है? वेद ज्ञान वो कोई मामूली बात नहीं, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर माने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ से लेकर जहां तक परमात्मा दशा केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता है, वहां तक भेद ज्ञान से ही कार्य सिद्धि होती है। जब केवल ज्ञान होता है, परमात्मा दशा होती है, तो आत्मा आत्मा में संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। जहां तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर हमेश के लिए नहीं हुए, वहां तक भावयेत भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का भाव चलना चाहिए। ये बात समवर अधिकार में बहुत लिया है, इसलिए यहां वेद ज्ञान को सूर्य के तेज का समूह कहा है। जैसे सूर्य का तेज का समूह इतना है कि अंधकार कहाँ चला जाता है किसी को पता लगता नहीं है, कि इतना गाढ़ अंधकार था, कहाँ खो गया, ढूंढने जाओगे तो मिले नहीं। सूर्य का तेज इतना प्रबल है, ऐसा भेद ज्ञान रूपी ज्ञान, ज्ञान सूर्य ऐसा है कि अज्ञान अंधकार को कहाँ भगा देते पता चलता। वेद ज्ञान करने वाले जीव को ऐसा अपना ज्ञान सूर्य का अनुभव होता है, इसलिए उनको अज्ञान मुझे रहा के नहीं रहा इसकी शंका नहीं होती। फिर से जिसको भेद ज्ञान का प्रयोग भीतर में चलता हो यथार्थ, उनको ये शंका नहीं रहती कि मेरा अज्ञान रहेगा कि रहा कि नहीं रहा, क्योंकि सूर्य का उदय होने से अंधकार की शंका किसी को रहती है क्या? कि कहीं अंधकार छिप गया हो और बाहर निकलेगा तो बेचारा सूर्य का तेज का क्या होगा, ऐसी शंका होती है कभी? है, क्योंकि बहुत गाढ़ अंधकार थे, इतना गाढ़ अंधकार था और बहुत पुराने साल का इधर अंधकार था, हजारों साल तक यहाँ गाढ़ अंधकार ही रहा है। कहते हैं कि सूर्य के तेज आने पर अनादि का अंधकार हो, हजारों साल का, करोड़ों साल का हो, जाने में एक समय लगता है, दूसरा समय नहीं लगता। इसका प्रवेश हुआ कि वो गायब। ऐसे ज्ञान होते ही अज्ञान अंधकार खत्म होता है।
कोटि वर्ष में स्वप्न पण जागृत होता है,
ज्ञान तथा सामान्य तौर से संसारी जीव को अपना मोह का जो अनुभव है उससे बहुभाग जीव को तो ऐसा निश्चय हो जाता है कि मोह मिटता ही नहीं, कोई मिटा सकते ही नहीं, कोई कितना भी कहे हम नहीं मान सकते, मोह मिट ही नहीं सकता। मोह एक चीज ऐसी है कि मोह नहीं मिट सकता। ऐसे मानने वाले को भेद ज्ञान से कैसे मोह मिटता है? विभतेम विभाव अनादिनो, मोह रूपी अनादि का विभाव ज्ञान होते ही खत्म मिट जाता है। कैसे? चुटकी बजाओ वैसे, इतनी आसानी से मिटता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। लाख परिश्रम करे, जंगल में जाके शीर्षासन तप करे, ऊंधे माथे ऐसे मुंह नहीं जाता, ज्ञान से जाता है। इसका एक ही इलाज है, ज्ञान उसको मार डालता है। ऐसा जो भेद ज्ञान, अब जो विचार करने पर भेद ज्ञान होता है वही कहते हैं। ये भेद ज्ञान किस विचार से होता है, विचार मैंने किस प्रकार की समझ से होता है। ये मार्ग बिल्कुल भगवान का, जिनेश्वर का मार्ग है, बिल्कुल समझदारी का मार्ग है, ऐसे नहीं चलता। ठोस वस्तु का स्वरूप, स्वरूप ज्ञान, वस्तु का स्वरूप ज्ञान कैसा? ठोस वस्तु का जो स्वरूप ज्ञान है, यहां से जिन मार्ग का उद्भव हुआ है, इसलिए उसमें उतनी ताकत है कि मोह राजा को मिटाने में, मारने में देर लगती है। इस ग्रंथ में आया है कि मोह रूपी राजा का शासन तीनों लोक के जीव पर चलता है।
एक चक्री,
एक चक्री शासन है। कैसा?
एक चक्री।
एक चक्री मैंने क्या कि उसकी सत्ता का विभाजन नहीं है, एक हत्थु सत्ता है उसके पास। ऐसा नहीं है कि इधर उसका चले, इधर उसका चले। तीनों लोक के जो संसारी जीव है, देवलोक, मनुष्य लोक और अधोलोक में नीचे जितने भी जीव है, मोह राजा का राज सबों पर एक चक्री शासन चलता है, किसी का नहीं है इतना शासन, किसी का नहीं। इंद्र का भी देवलोक में चलता है, चक्रवर्ती का मनुष्य लोक में चलता है, वो भी छह खंड में, इसे आगे नहीं, छह खंड से आगे नहीं। लेकिन ये मोह राजा का राज तो तीनों लोक में चलता है। फिर भी जीव का ज्ञान, एक जीव का भेद ज्ञान उसको मारता है। समझ में नहीं आया।
तीनों लोक में किस प्रकार से?
तीन प्रकार में, देवलोक में भी मोह है, देवों को, देवियों को मोह है, मनुष्य लोक में भी सबों को, सब मानव समूह मोह में पड़े हैं, त्रिंच भी, और अधोलोक में नारकी लोक भी मोह में है। कौन मोह में नहीं है? सभी संसारी प्राणी को मोह ने घेर लिया है। देख लो अपने आप को, है कि नहीं है। तो एक जीव भेद ज्ञान करता है, मुंह को पछाड़ता है, वो किस विचार से होता है वो कहते हैं कि व्याप व्यापकता तदात्मनि भवेत, समस्त गुण रूप और पर्याय रूप भेद विकल्प तथा एक द्रव्य रूप वस्तु एक सत्व रूप वस्तु में होता है। क्या कहते हैं? एक द्रव्य रूप वस्तु में अपना गुण पर्याय की व्याप्त व्यापकता होती है, दूसरी वस्तु में होती ही एक वस्तु में अपने गुण पर्याय की व्यापी व्यापकता होती है, इससे बाहर कहीं भी नहीं। जैसे हमारा ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है हमारे में जीव में, और उसकी पर्याय को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को बाहर के पदार्थ को जानने में वहां जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता। इधर में रह करके अपने स्वक्षेत्र में रह करके वो दूरवर्ती पदार्थ को जान लेता है, बाहर निकलना नहीं पड़ता, अपने क्षेत्र से बाहर निकलना नहीं पड़ता। ऐसे भूलने में आते कि मेरा उपयोग वहां गया जी, बोलने की बात नहीं, उपयोग उपयोग में ही है, लेकिन वहां का ज्ञान हो गया उसको बोलने आए कि उपयोग वहां गया, ज्ञान वहां पहुंचा नहीं है। क्योंकि व्याप्य व्यापकता अपने क्षेत्र को छोड़कर वस्तु की होती ही नहीं, गुण की और पर्याय की। इसका भावार्थ ऐसा है कि जैसे सोना, सोने का दृष्टांत बहुत दिया है शास्त्र में, जैसे सोना पीला है, वजनदार है, लेकिन सोना तीन नहीं है, एक सोने में ये तीन बात है, तीन सोना नहीं है, पीला सोना अलग है, वजन वाला अलग है, चिकना वाला अलग है, वो नहीं, एक सोने का ये तीन भेद है, तीन गुण है, इसके तीन पर्याय है दृष्टांत में। ऐसा कहने के लिए है, परंतु एक सत्व है, एक वस्तु है, सोना एक है, वैसे जीव द्रव ज्ञाता दृष्टा ऐसा कहने के लिए है, परंतु एक सत्व है, गुण पर्याय का भेद कहने के लिए है। वस्तु तो एक है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, आनंद भी है, अस्तित्व भी है, कुछ भी है, एक सत्व में है।
वैसे तादात्म्य, एकाकार, व्यापक, तीनों में क्या?
तादात्म्य मैंने, तद मैंने ते, आत्मा मैंने आत्मा, वही है आत्मा जिसका, इसको कहते हैं तदात्म्य। अपन नहीं कहते हैं कि हमारा बहुत संबंध है, आत्मीय संबंध है, कैसे कहते हैं? आत्मीय संबंध होने से हम एक दूसरे को अलग है ऐसा नहीं मानते। ऐसे दो घनिष्ठ मित्र होते हैं, कहते हैं हमारे तो आत्मीय संबंध है, मैंने हम लोग एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं तो हिसाब किताब नहीं करते, हिसाब किताब नहीं करते, मैंने आपके लिए कुछ किया वो हमको नहीं लगता, क्यों? हमारी आत्मता है। ऐसे तदात्म नहीं, मैंने, वही है आत्मा जिसका, तो गुण अनेक गुणों का आत्मा एक है, अनेक गुणों का पदार्थ एक है, जैसे सोना पीलापन, चिकनापन, भारीपना, उसका सोना एक है, तीनों का सोना तो एक है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, अस्तित्व आदि का आत्मा तो एक है, क्योंकि वाप व्याप व्यापकता एक आत्मा में, वही आत्मा में बनती है, दूसरे में होती ही
नहीं।
क्या कहते हैं? उसी अनुसार एक सत्व में व्याप व्यापकता होती है गुण पर्यायों के, अर्थात भेद बुद्धि करने में आए तो व्याप व्यापकता होती है, भेद बुद्धि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भेद करने पर भी एक सत्व में एक पदार्थ में ही व्याप्य व्यापकता होती है। इसका मतलब कि दूसरे पदार्थ में व्याप्य व्यापकता नहीं होती। जब दूसरे पदार्थ में उपस्थिति नहीं है तो करे क्या, करे क्या? हम शरीर के एक परमाणु को अपनी इच्छा अनुसार नहीं परिणमन करा सकते, इसका कारण क्या? एक परमाणु को भी अपनी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करा सकते, इसका कारण क्या? कि हमारे जीव का प्रवेश उस परमाणु में नहीं है, जहां हमारी पहुंच नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? परमाणु में हमारी पहुंच होती नहीं है। तो जड़ है, हम चेतन है, जड़ में चेतन का प्रवेश असंभव है, इसलिए वो स्वतंत्र परिणमन करता है अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से। जीव उसमें, इसकी ताकत में कोई हस्तक्षेप कर सकता नहीं। परमाणु के परिणमन में जीव का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, करना चाहे तो भी कर ही नहीं सकता। व्यापक अर्थात द्रव्य परिणामी अपने परिणाम का कर्ता होता है। व्याप्य अर्थात परिणाम जो द्रव्य ने किया, जिसमें एक पदार्थ में ऐसा भेद करने में आता है तो होता है, न करने में आता है तो नहीं होता है। भेद तो करने से होता है, बाकी भेद का कोई भेद की आवश्यकता नहीं है। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान मोह और राग को मिटाता है और वीतरागता को उत्पन्न करता है। इसके पीछे प्रयोजन है
जी,
ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने के पीछे प्रयोजन है। गुरुदेव कहते थे कि ये क्या वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है, भिन्न है, ये क्या बात है? धर्म की बात करो ना, पूजा करो, भक्ति करो, त्याग करो, पचखान करो, उपवास करो, आप तो पदार्थ की बात करते हैं। तो पदार्थ के सही ज्ञान से वीतरागता उत्पन्न होती है, राग मिटता है, और वही धर्म है। राग का मिटना और वितरागता का उत्पन्न होना वही धर्म है। धर्म का परिभाषा ही वही है, वस्तु का स्वभाव वही धर्म है। जीव सत्व से उद्गल द्रव्य सत्व भिन्न है, निश्चय से मैंने वास्तविक रूप से, क्यों कि परस्पर व्याप्य व्यापकता नहीं है, इसलिए सर्वथा भिन्न है। मैं एक अकेला जीव द्रव्य हूं, मेरे में ज्ञान होने से मेरा ज्ञानमय स्वभाव है, और सभी सर्व से सर्वथा भिन्न हूं। ज्ञानमयता के कारण से, मेरे में मेरी ज्ञानमयता के कारण से मैं सर्व से सर्वथा भिन्न हूं। भिन्न होने से किसी में अपनत्व नहीं रहा, अपना आत्मा के सिवा सब पराया हो गया। सब पराया होने से पराये की उपाधि होती ही नहीं। उपाधि किसकी होती? अपनापन होने से। उपाधि गई तो दुख, उपाधि गई तो आकुलता, बस खत्म। तो कहते हैं कि ये तो जीव को सुखी होने के लिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं? सुखी होने के लिए कहते हैं। इसके सिवा उपाधि मिटने का कोई इलाज जगत में नहीं है। भेद ज्ञान किए बिना किसी की भी उपाधि मिटे ये परिस्थिति न भूतो न भविष्यति कभी हो सकती है। सारे जगत के धर्म संप्रदाय देखो और सारे भौतिक विज्ञान के शास्त्र देखो, भेद विज्ञान का विषय एक दिगंबर शास्त्रों के अलावा कोई जगह नहीं है, श्वेतांबर जैन के भी नहीं। यही एक विशिष्टता है, जिन मार्ग की कोई विशिष्टता है, सारे जगत में जो चीज नहीं है वो जिन मार्ग में है। इसलिए उपाधि रहित अनाकुल सुखमय जीवन अगर जीना हो तो ये भेद ज्ञान से हो सकता है, दूसरे से हो सकता है। आत्मा की बहुत सी बातें वेदांत करते हैं, पीतांबर शास्त्र में भी है लेकिन भेद ज्ञान का विषय नहीं। और गीता और ऐसे वेदांत उसमें आत्मा की बहुत सी बातें हैं लेकिन भेद ज्ञान की बात कहीं पे नहीं है। क्योंकि इस जगत की रचना ऐसी है कि असत्य का आग्रह हो जाए
जी।
क्या हो जाए?
असत्य
का आग्रह हो जाए। देखो हमने वो काम किया, देखो हमने वो काम किया, हम बोलते हैं अभी, भले ही भाषा पुद्गल वचन है लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और हम जैसा हमारी मर्जी है वैसा बोलते हैं, नहीं बोल सकते वो बात कहां रही। तो ये जगत की रचना ऐसी है कि असत्य का आग्रह हो जाए और बेस बिल्कुल अलग है, जड़ चेतन सर्वथा भिन्न है, किसी की आपस में व्यापक व्यापकता नहीं होने से पहुंच नहीं है तो कार्य करे कैसे। ये शब्द निकलते हैं, शब्द क्या चीज है कि परमाणु के स्कंध का आपस में टकराव होता है, उसमें से शब्द पैदा होता है, आवाज पैदा होती है। शब्द तो आवाजात्मक है ना, शब्द में आवाज है, वो आवाज कहां से पैदा होता है? परमाणु परमाणु जब टकराता है तब आवाज होता है। आकाश में भी होता है कि नहीं होता है, बादल के गड़गड़ाहट होते हैं कि नहीं होते हैं, परमाणु टकराते हैं। ऐसे ये भाषा निकलती है तब परमाणु का टकराव होता है खास प्रकार का, तब भाषा निकलती है। वो परमाणु के टकराव में जीव की उपस्थिति नहीं, और बोलने का जो जीव का भाव है उसमें परमाणु की उपस्थिति नहीं है। लेकिन रचना कोई ऐसी है कि असत्य का आग्रह हो जाए कि जीव बोलता है, जीव बोलता है ऐसा लगता है। अगर जीव बोलता तो टेप रिकॉर्डर में भी जीव की उपस्थिति हो जाती, ऐसे टेप में भी उतरता है, एक घंटे के बाद उसको फोन स्विच ऑन करो यही बात निकलेगी, जो आपने सुनी वही बात दोबारा सुनने को मिलेगी। आप 100 दफे सुन लो वहां जीव है, उसको कहीं भी ले जाओ, जीव जो जीव के जगह है टेप टेप की जगह में है, परमाणु का टकराव होने से आवाज होती है। ये पुद्गल का गुणधर्म है, जीव का हरगिज नहीं।
जीव का मर्यादा तो विकल्प में कम
होगा, उसका कार्य क्षेत्र अपने भाव तक है। जीव का कार्य का क्षेत्र अपने भाव में समाप्त हो जाता है, इससे आगे है ही नहीं। फिर परमाणु में कोई कार्य होवे कोई कार्य नहीं भी होवे, होने लायक होवे तो होवे, नहीं होने लायक होवे तो वो स्वतंत्र है।
विज्ञान में जहाँ पे चार स्टेप दिए हैं, व्यापकता, अनुभवता, प्रैक्टिकल साइड से आते हैं।
अभी यहाँ तो व्यापकता का एक इफेक्ट चलता है। इस विदकता की बात अलग है, प्रत्यक्षता की बात अलग है। यहाँ जो कलश में जो विषय है वो सीमित है व्यापकता से, कि पहले व्यापकता को अनुभव करो अपनी। अपने में व्यापकता अनुभव करने से शुद्ध चैतन्य का अनुभव मैंने वेदन होगा। अरे बोलो ना, अनादि से मिथ्यात्व रूप परिणमन मिटते जीव कर्म का एक पर्याय स्वरूप परिणमता था वो छूट गया, शुद्ध चेतन अनुभव हुआ, इतना लिख दिया। मूल में वो बात नहीं है, ज्ञानी भूज इसमें से निकाला। ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ, कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ। अकेला अपना आपका अनुभव शुद्ध, मैंने मिलावट भी नहीं कहा, मेरे में किसी की मिलावट है नहीं। श्री गुरु कहते हैं कि तुम स्वीकार करो कि मेरे में किसी की मिलावट है नहीं। मिलावट होए तो अच्छा नहीं है, तेरी शुद्धता तुझे बतलाते हैं, उसमें तुम्हें आपत्ति क्या? तेरी शुद्धता का तुझे गौरव होना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि तेरी शुद्ध सत्ता है, क्या है? तुम बिल्कुल अनादि अनंत मूल स्वरूप से शुद्ध चैतन्य हो, वही तेरा परम स्वरूप है, परम आत्म स्वरूप है, इसलिए तुम परमात्मा हो। तुम्हें इस बात सुन करके आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। अच्छा ऐसा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो ये मानता था कि शरीर मेरे में आ गया, विकार मेरे में आ गया, मेरे में वो आ गया, मेरे में वो आ गया। मूल स्वरूप तो शुद्ध चेतना धातु, जैसे सोना की धातु ऐसी है कि सोने की डल्ली को हजारों साल कीचड़ में रखी जाए, कीचड़ सोने में घुस सकता है और सोना मिट करके कीचड़ बन जाता है, सोना वैसा का वैसा निकलेगा। जमीन में गाड़ते है कि नहीं गाड़ते, निकलता है वैसा का वैसा। ऐसे अनादिकाल से माना था कि जीव और अजीव जड़ एक हो रहा है, एक साथ काम कर रहा है, इसलिए एक है, मिलावट हो गई है, वो छूट गया। सही ज्ञान होने से वो बात छूट गई, तो शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ।
तो पोतानी व्यापकता ने अनुभव प्रत्यक्ष करीने जोई दीधो।
व्यापकता को देखो, भीतर में अपनी व्यापकता को देखो तो दूसरा कुछ हमारे में है ही नहीं, ऐसा अपनी शुद्धता का अनुभव होएगा।
ज्ञान मात्र।
और अपना अपनी शुद्धता का अनुभव होने से उपाधि रूप दुख छूट जाएगा, मिट जाएगा। प्रयोजन तो दुख मिटाने का है, संसार में उल्टा मान करके भी सुखी होना चाहता है। यहाँ सुल्टा मानने से कैसे सुख होता है वो बताते हैं। इसलिए निश्चय से जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापकता नहीं है। भावार्थ ऐसा है कि जैसे उपचार मात्र से द्रव्य अपना परिणाम का करता है, वही परिणाम द्रव्य से किया हुआ है वैसे अन्य द्रव्य का करता अन्य द्रव्य उपचार से भी नहीं है। अपना परिणाम मैं करता हूँ ऐसा भेदोपचार से बोला जाता है, लेकिन उपचार से मैं दूसरे का काम करता हूँ, शरीर का काम करता हूँ, ऐसा उपचार भी लागू होता नहीं है, क्योंकि एक सत्व नहीं है, भिन्न सत्व है। इस कारण से कि एक सत्व है भिन्न, एक सत्व नहीं है भिन्न भिन्न सत्व, सत्व मैंने सत्ता को धारण करने वाले को सत्व कहते हैं, का सत्व भिन्न, जड़ का सत्व भिन्न, जड़ की सत्ता भिन्न, मेरी सत्ता भिन्न है। भगवान कहते हैं कि तेरी सत्ता में किसी और की सत्ता नहीं, तुम तेरी सत्ता का अखंड राज को राजो, हाँ, तुमको तेरा अखंड राज दिया जाता है, तुम आनंदो, ऐसा कहते हैं। तो उसकी मनाई क्यों करें?
ये सब पुरुषोत्तम बुद्धित था,
हाँ, ये सब पुरुषोत्तम बुद्धित था, आनंद करो। परिणाम परिणामी मात्र भेद की उत्पत्ति के बिना ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म का करता जीव द्रव ऐसा अनुभव घटित होता नहीं। परिणाम परिणामी मात्र भेद की उत्पत्ति बिना, एक पदार्थ में पदार्थ परिणामी है और उसकी पर्याय इसका परिणाम है, ऐसा भेद एक पदार्थ में होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ में परिणाम परिणामीपना होता नहीं है। वो व्याप्य व्यापकता का अर्थ किया, व्याप्य मैंने प्रसरने योग्य, व्यापक मैंने व्यापने वाला, प्रसार प्रसार करने वाला। तो पदार्थ अपने परिणाम में प्रसरता है, अपनी पर्याय में, दूसरे पदार्थ में उसकी व्यापकता नहीं है, और दूसरा पदार्थ व्याप्य भी एक पदार्थ का नहीं है। तो एक पदार्थ में व्याप्य व्यापकता के हिसाब से परिणाम परिणामी भेद होता है, दो पदार्थ के बीच में परिणाम परिणामी का भेद नहीं हो सकता। तो ऐसा भेद की उत्पत्ति के बिना ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव द्रव ऐसा अनुभव घटता, मैं ज्ञानावरण आदि उद्गल कर्म को बांधता हूँ वो बात घटित होती, क्योंकि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक सत्ता नहीं है, भिन्न सत्ता है, एक की सत्ता में दूसरा की सत्ता नहीं। मुनिराज को भी बीमारी होती है शरीर में, फिर भी उसको बीमारी का दुख नहीं है, ज्ञानी को भी नहीं है, मुनिराज को तो प्रकट रूप से देखने में नहीं आता है, क्यों कि शरीर की सत्ता में मेरी सत्ता नहीं है इसका अनुभव होता है। असाता वेदनी का पर्याय किसमें है? शरीर में है। वेदनी कर्म की पर्याय वेदनी में है, इसका फल शरीर में आया, असाता वेदनी पुद्गल में जीव में नहीं आया। तो ये असाता वेदनी की पीड़ा जिसको कहते हैं उसका ज्ञान होता है, ज्ञानी को मुनि को इसकी पीड़ा होती ही नहीं, पीड़ा का ज्ञान होता है, पीड़ा नहीं होती, पीड़ा का दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होने से पीड़ा का दुख नहीं होता, इसलिए वो स्थिर रह सकते हैं।
ज्ञान मात्र ज्ञान में वेदन चाहिए,
उसको तो अपने को ज्ञान का वेदन है, पीड़ा का वेदन नहीं है। मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में, व्याप्ता है, प्रसरता है, शरीर की पीड़ा में जाता नहीं, जान लेता है दूर से, जैसे वो पेड़ को जानता है दूर से वैसे, लेकिन अपने में अनुभव करता, अपने ज्ञान की व्यापी व्यापकता को वो अनुभव करते हैं वेद ज्ञान से, इसलिए उनको दुख होता। सर्व प्रकार के दुख से मुक्त होने की ये मास्टर की है, सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाए। ऐसे ज्ञान सूर्य के द्वारा, फिर बोला वेद ज्ञान को कि ऐसे ज्ञान सूर्य के द्वारा मिथ्यात्व रूप अंधकार मिटता है और जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये सम्यक दर्शन का लाभ है, सुख होने का। अंधकार मिटता है ज्ञान का, वेद ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। बिना वेद ज्ञान किसी को सम्यक दर्शन स्वानुभव होता नहीं है।